مدو کلام سی یہ کلام خدا کے نام سی یہ کلام خدا سی اے وہی مدو خدا کے نام سی یہ کلام مجسم ہے یہ فضل تو سچائی ناز بھرپور ہو کے سادے کو ڈیرا کیتا یہ اسا اجیہا جلال دکھا جس طرح باپ دے اکلوتے دا جواب پاک کلام دا اے حصہ تسی www دا کلام خدا دا خان اس سنو گے
موسم گرما میں سے ہم گزر رہے ہیں اور ہر سال ہمیں موسم گرما کا بہت انتظار رہتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے چھٹیاں تعطیلات شروع ہی سے جب سے ہم بڑے ہو رہے ہیں برے صغیر پاک و ہند میں بھی اور اب یہاں پر بھی جو بچے ہیں گرمیوں کو انہیں خاص طور پہ انتظار رہتا ہے کیونکہ گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں دنیا کے مختلف علاقے ایسے ہیں مثال کے طور پہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جہاں پر وقت یہاں کے وقت کے بالکل الٹ ہے جب ہمارے پاس دن ہوتا ہے تو وہاں پہ رات ہو جاتی ہے اور جب وہاں پہ رات ہوتی ہے یہاں پہ دن ہوتا ہے اسی طرح جب یہاں پہ سردیاں آتی ہیں تو وہاں پہ گرمیاں آ جاتی ہیں اور جب وہاں پہ گرمیاں آتی ہیں تو یہاں پہ سردیاں آ جاتی ہیں لیکن ایک چیز جو مسلسل ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ ہیں گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو خاص طور پہ اس لیے گرمیوں کا انتظار رہتا ہے کیونکہ اسکول بند ہو جاتے ہیں پاکستان اور بھارت میں تو گرمی کی اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے کہ اسکولوں کو بند کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر بھی گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں اس کی ایک سمپل سی وجہ یہ ہے کہ ٹرمز ختم ہو جاتی ہیں اور جب جولائی کے آخر میں ٹرمز ختم ہوتی ہیں تو ایک یا ڈیڑھ مہینے کا عرصہ بچے فارغ ہوتے ہیں اور پھر سپٹمبر میں نئی کلاسز کو جوائن کرتے ہیں یہی حال یونیورسٹیوں کا ہے اور سب اداروں کا ہے بہت ساری چھٹیاں ایسی بھی ہیں جو گرمیوں میں نہیں بلکہ سردیوں میں آتی ہیں کیونکہ بہت سے مغربی ممالک میں اتنی زیادہ برف پڑتی ہے کہ اسکولوں کو اور کالجز کو بند کرنا پڑتا ہے تو چھٹیاں چلتی رہتی ہیں اور چھٹیوں کا مقصد آرام ہے ریسٹ ہے اور آج ہمارا موضوع بھی یہی رہے گا کہ آرام کی اہمیت کیا ہے ریسٹ کی امپورٹنس کیا ہے عام طور پہ جو ایشینز ہیں ہم ایشیائی لوگ ہمارے نزدیک آرام کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے نہ ہم چھٹیاں گزارنا پسند کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے اور پیسہ سب کچھ ہے اگر ہم چھٹیوں پہ جائیں گے تو ہمارے پیسے لگیں گے اس لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ عمومی طور پہ ایشیائی لوگوں میں خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشینز میں چھٹیوں پر جانے کا رجحان آرام کرنے کا رجحان بہت زیادہ کم ہے ہم اپنے مصروف ہونے کو بڑی فخر کی بات تصور کرتے ہیں اور ہر ایک کو یہ بتاتے ہیں کہ میں تو بہت مصروف ہوں اور بعض اوقات ہم ہوتے بھی ہیں کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 7 کے 7 دن کام ہی کرتے رہیں فارغ نہ بیٹھیں بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دن ہم فارغ ہوں ہمیں گلٹی فیل ہونے لگ پڑتا ہے کہ آج ہم فارغ ہیں اگر میں کام پہ ہوتا تو آج 1 گھنٹے کے مجھے اتنے پاؤنڈز ملتے اور شام تک میں اتنے پیسے کما لیتا بعض دفعہ اگر کوئی چھٹیوں پہ ہو تو ہم اس پہ بھی اعتراض کرنے لگ پڑتے ہیں یہ اتنی دیر تک چھٹیاں تھے پتہ نہیں کھاندا کتوں ہیں یہ ضرور گورنمنٹ تو پیسے لیندا ہوئے نہ خود سے چھٹیاں کرنی ہے نہ کسی کو کرنے دینی اور اگر کسی نے کرنی ہے تو بھی اعتراض کرنا ہے یہ ایک بڑی عام سی بات ہے جس سے مجھے امید ہے کہ ہم سبھی یہاں پر موجود لوگ اور وہ لوگ بھی جو بات ازاں انٹرنیٹ کے ذریعے اس آواز کو اور اس پیغام کو سنیں گے وہ بھی اسے کسی حد تک اگری کریں گے کہ یہ بات بہت حد تک سچ ہے اگر ہم اپنے آپ کا موازنہ کریں مغرب کی دنیا کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں جو بھی شخص کام کرتا ہے جو فارغ ہے وہ تو رہتا ہی چھٹیوں پہ ہے لیکن جو کام کرتا ہے اس کو بھی کم سے کم 4 سے 6 ہفتے تک کی پیڈ لیو ملتی ہے سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں ان میں سے 4 سے 6 ہفتے کا پیڈ ریسٹ ملتا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکیں کہیں باہر جا سکیں آرام کر سکیں بہت سارے لوگ جہاں پر جس ملک میں مقیم ہیں वहां पर ही हॉलीडेज गुजारते हैं। हाल ही में मैं अपने खानदान के साथ वेल्स में था। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो बैरूने मुल्क भी अपनी छुट्टियां गुजारने जाते हैं, जैसे सैमसन साहब हैं, वो गालिबन फ्रांस में अपने खानदान के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए गए हैं। मुख्तलिफ सोसाइटीज में, मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ रुझान है। बहुत सारे लोग जो घूमना फिरना पसंद करते हैं वो पूरी दुनिया भी घूमना चाहते हैं, और जो घूमना फिरना नहीं पसंद करते वो छुट्टियां भी लेके घर ही में गुजार देते हैं। जैसे जिक्र किया आपके सामने कि मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। सैमसन साहब फ्रांस गए हैं तो फ्रांस ही का तस्करा जारी रखते हैं। फ्रांस में रिवायत है कि माह अगस्त के पहले दो हफ्ते आमतौर पर लोग छुट्टियां गुजारते हैं। फ्रांस में माह अगस्त के पहले दो हफ्तों के दौरान लोगों की कोशिश होती है कि अपनी हॉलीडेज को बुक किया जा सके, और वो टूवर्ड्स द साउथ जाते हैं जहाँ पे बीचेस के ऊपर अपना टाइम गुजारते हैं और ग्रीनरी इंजॉय करते हैं, पहाड़ों को, वादियों को। लेकिन हम लोगों में ये तासुर बहुत ज्यादा कम है। हम लोगों की जब छुट्टियों की बात आती है, जो बैरून ममालिक बसते हैं, जिनको आमतौर पर परदेसी भी कहा जाता है, जब उनकी छुट्टियां आती हैं तो उनकी खुशी होती है वापस पाकिस्तान या इंडिया चलते हैं, क्योंकि हमारी छुट्टियां हैं तो अब हमने यहां पे क्या करना है, अब छुट्टियों पे चलते हैं। और छुट्टियां किधर चलेंगे, पाकिस्तान में। ठीक है, समझ में आती है बात कि छुट्टियों का एक मकसद, रेस्ट करने का एक मकसद ये भी है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपने खानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारें ताकि आप रिलैक्स करें। लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो फिर क्या ही छुट्टियां गुजरती हैं। खानदान को तो मिलते हैं लेकिन फिर आराम क्या होता है वहां पर, ये तो एक अलग ही कहानी है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बड़े शौक से हम छुट्टियों पे जाते हैं और अपने आप को आराम की बजाय मजीद प्रॉब्लम्स में धकेल लेते हैं। बाज दफा रिश्तेदारों की अलग टेंशन, फाइनेंस की अलग प्रॉब्लम, सिक्योरिटी की अलग प्रॉब्लम। लेकिन इस सब के बावजूद हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे रिश्तेदार, अजीज और कारब वहां पर बसते हैं और हमारी एक मोहब्बत है, एक लगाव है, एक उनस है उस मुल्क से, उन जगहों से जहां पर हम पले बड़े हैं। हमारा दिल करता है वहां पर जाने को। और ये सब कुछ मिल मिलाकर, इसके बावजूद कि एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, सिक्योरिटी का माहौल बहुत खराब है हमारे ममालिक में, महंगाई बहुत ज्यादा है, जिधर भी जाएं कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आती है, लेकिन फिर भी हम जाकर जहनी तौर पे अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि हमें उस जगह से मोहब्बत है। हम लोग जो छुट्टियां नहीं गुजारते, हम लोग जो बहुत ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, शायद हमारा ख्याल ये है कि हम एक बहुत हार्ड वर्किंग नेशन है या हमारा एक बहुत हार्ड वर्किंग नेशन से ताल्लुक है, इसीलिए हम छुट्टियां नहीं करना पसंद करते, बल्कि हर वक्त काम ही करना पसंद करते हैं। और हर वक्त जो हमारी जॉब है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसी पे लगे रहें, अगर छुट्टी भी है तो एक्स्ट्रा काम कर लें, लेकिन काम करते रहें। हार्ड वर्किंग नेशन तो हम जरूर हैं एज अ होल जनरली, लेकिन किन किन बातों में? काम करने के लिए तो हम यकीनन हार्ड वर्किंग नहीं है, लालच के लिए तो हम जरूर हो सकते हैं, गॉसिप के लिए तो बहुत हद तक हम हैं एज अ नेशन। हम टाइम बहुत सारा जाया करने के लिए भी बहुत मशहूर हैं, और बहुत सारी एज अ पाकिस्तानी या इंडियंस या बरेसगीर पाक हिंद के लोग और दूसरे ममालिक जो इस खत्ते के हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए बहुत हार्ड वर्किंग है जिनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता मगरब में। लेकिन अगर हम एक मिसाल के तौर पे एक ऐसे मुल्क को देखें जो वाकई ही बहुत हार्ड वर्किंग नेशन, जिसको दुनिया की सबसे हार्ड वर्किंग नेशन कहा जाता है, वो है मुल्क जापान। जापान की नेशन को दुनिया की सबसे हार्ड वर्किंग नेशन कहा जाता है। मगरब में, वेस्ट में लोगों को आमतौर पे 4 से 6 हफ्ते की छुट्टियां मिलती हैं, जबकि जापान में अमूमी तौर पे अप टू 2 वीक्स पेड हॉलीडेज अलाउड होती हैं, जो कि लोग वो भी नहीं लेते। जापान इतनी हार्ड वर्किंग नेशन है कि वहां पे सबसे सीरियस हेल्थ इश्यू को मुकामी जुबान में करोशी कहा जाता है, और करोशी का मतलब है हार्ड वर्क करते हुए मर जाना। इंग्लिश में उसकी लिटरल ट्रांसलेशन है डेथ बाय ओवरवर्क। एक ऐसी हार्ड वर्किंग नेशन जो इतना काम करती है कि उनकी सेहत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का नाम है करोशी, जिसका मतलब है डेथ बाय ओवरवर्क। तो हम तो मेरे ख्याल से इतनी हार्डवर्किंग नेशन नहीं है जितनी जापान है, लेकिन फिर भी शायद बहुत सारे दिलों को और जहनों को इस बात से तस्कीन मिले कि हम बहुत ज्यादा काम करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम एक हार्डवर्किंग नेशन है। अगर हम कंपैरिजन करें अपना और वेस्ट का, तो हम ये देखेंगे कि वेस्ट के लोग काम कम करते हैं इसलिए हम समझेंगे ये लेजी हैं या ये काम से भागते हैं, इतनी ज्यादा ये छुट्टियां करते हैं, अक्सर सिक लीव पे रहते हैं, छुट्टियां इन्होंने साल साल पहले बुक करवाई होती हैं, और हम लोग तो बहुत ज्यादा सिंसियर हैं अपने काम के साथ, हम हर वक्त काम करते हैं, तो ये लोग लेजी हैं, क्या ये दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त है। इसलिए कि अगर इस मुआवजे में हम थोड़ा सा मजीद आगे जाएं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन लोगों के मुकाबले में जिनसे हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, क्या हम ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं? क्या हम इनसे तरक्की की दौड़ में आगे हैं? इसके बावजूद कि हम ये भी तस्वर महफूज कर लें कि ये लोग सुस्त हैं और हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, हम फिर भी इनसे आगे नहीं हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि रेस्ट करना और काम से जी चुराना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये लोग रेस्ट करते हैं और हमारी नेशन के लोग अक्सर काम से जी चुराते हैं, जिसको हम शायद रेस्ट तस्वर करते हैं। मुख्तलिफ कल्चर्स में जैसे हमने बात की कि मुख्तलिफ चीजें हैं, वेस्ट में अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, यकीनन आप सब इसको समझेंगे कि व्हाइल इन वेस्ट पीपल वर्क टू लिव, वी लिव टू वर्क। बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। एक जो बहुत आम और बहुत ज्यादा समझने में जो आसान रीजन है वो ये है कि हम लोग मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जो एशियंस हैं मोस्टली, हमारा जो सोच और हमारा जो सोच का दायरा है वो वेल्थ के इर्द गिर्द घूमता है, पोजेशंस के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हमारे पास मोबाइल कौन सा है, हमारे पास घर कितना बड़ा है, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा तरजीह देते हैं। और जाहिर सी बात है कि मटीरियलिस्टिक चीजों को हासिल करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसे के लिए आपको काम करना है, और अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए एशियन सोसाइटी में अगर आपको बहुत ज्यादा गोल्ड चाहिए, नए मोबाइल चाहिए, नई गाड़ियां चाहिए, आपको पैसे की जरूरत है, और पैसा तो फिर काम ही करने से आएगा। लेकिन वेस्ट इतना ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों के उनका कल्चर नहीं घूमता। हम आमतौर पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही सूट में हमें हर वक्त नजर आते हैं, एक ही गाड़ी है जो वो सालों से चलाते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंतहाई अमीर हैं, जिनको शायद ये भी नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है, क्योंकि वो गिन ही नहीं सकते, लेकिन आप देखेंगे कि वो एक ही कपड़ों में नजर आते हैं और इंतहाई सादा तबीयत के मालिक हैं। मिसाल के तौर पे मरहूम स्टीव जॉब्स, जो एप्पल की कंपनी का सीईओ था, और एप्पल की कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पिछले साल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक कुछ अयाम ऐसे थे कि एप्पल की कंपनी के पास गवर्नमेंट ऑफ यूएस से भी ज्यादा पैसे थे। एप्पल दुनिया की अमीर तरीन आईटी कंपनी है, और उसके सीईओ को आप जब भी, अगर अब तो वो जहाने फानी से कूच कर गए हैं, लेकिन आप कभी इंटरनेट के ऊपर अगर स्टीव जॉब्स के नाम को सर्च करें तो आप देखेंगे कि एक ही काली शर्ट है और एक ही जीन्स की पैंट है, वो हमेशा आपको उसी में नजर आएगा। इसके बावजूद कि वो चाहे तो दुनिया की बड़ी बड़ी बुटीक्स को आंखें बंद करके खरीद ले, उसको पता ही नहीं कि इसके पास कितना पैसा था। लेकिन सादगी, हमारे काम बहुत ज्यादा करने की एक वजह ये भी है कि हम मटीरियलिस्टिक लोग हैं और हमारी नजर सिर्फ अपनी पोजेशंस के ऊपर और मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर रहती है, जिसकी वजह से हमें काम करने की जरूरत पड़ती है, और ये एक कल्चर ड्रिवन बात है। अब देखते हैं कि रेस्ट क्या है, आराम क्या है। बहुत सारे लोगों के नजदीक आराम करना वक्त का ज़िया है। जैसे हमने पहले बात की कि लोग समझते हैं अगर मैं इस वक्त काम पे होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास इतने पैसे आ जाते, मैं घर बैठा हूं, मैं फारग हूं, मेरा टाइम जाया हो रहा है। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि रेस्ट करना या आराम करना वक्त का ज़िया नहीं है। फिर जो बाकायदा आराम करना है, प्रॉपर रेस्ट है, इट इज वर्थ डूइंग। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक ऐसी चीज है जो इंसानों के लिए जरूरी है और बेहद जरूरी है। हम जा बजा जब जाते हैं, इधर उधर सड़कों के ऊपर जाते हैं, बहुत जगह हम बोर्ड देखते हैं कि डोंट ड्राइव वाइल टायर्ड, समथिंग लाइक दिस, अक्सर बोर्ड लगे होते हैं। क्योंकि इंसानी फितरत है कि हम काम करके थक जाते हैं और फिर हमें आराम की जरूरत है, और अगर हम आराम नहीं करते तो उसका हमें नुकसान होता है। हम कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देते हैं, हमारे रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसलिए ड्राइविंग के लिए इंतहाई जरूरी है कि आपने जब लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो आप मुकम्मल रेस्ट करें, नहीं तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन लूज करेंगे एक्सीडेंट का बायस बनेंगे। रेस्ट इज एसेंशियल, ना सिर्फ हमारी फिजिकल सेहत के लिए बल्कि हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए भी आराम करना इंतहाई जरूरी है। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देखते हैं कि रेस्ट को, आराम करने को कलामे मुकद्दस में हम कैसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आराम करना इतना ज्यादा जरूरी है कि जब खुदा ने सब कुछ तख्लीक कर लिया तो सातवें दिन उसने भी आराम किया, और खुदा जो कुछ भी करता है वो अच्छा है, और क्योंकि खुदा ने भी आराम किया, अच्छा काम है, इसलिए खुदा ने किया। अब बहुत सारे लोग जो समझते हैं आराम करना काहली है, सुस्ती है, अब वो खुदा को तो काहिल नहीं कह सकते, खुदा को तो वो ये नहीं कह सकते कि खुदा लेस क्रिएटिव है, खुदा की एबिलिटी कम है, खुदा थक जाता है। लेकिन इसके बावजूद कि कादर मुतलक खुदा जो सब कुछ करने पर कादर है, उसने सब कुछ बनाया, हर एक चीज का खालिक और मालिक है, उसने आराम किया। और जब खुदा ने आराम किया इसे साबित हो गया कि ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा फेल है, इसलिए हमें भी कर लेना चाहिए और हमारे लिए भी करना जायज है। खुदा ने, हम जानते हैं, सब कुछ 6 दिनों में तख्लीक किया। अभी हमारे लिए आंशर ने हवाला भी तलावत किया अंग्रेजी में कि जब खुदा ने सब कुछ कर लिया, जेनेसिस उसका चैप्टर 2 उसकी 2री और 3री आयत, कि जब खुदा ने सब कुछ 6 दिन में बनाया तो 7वें दिन उसने आराम किया, और हम सब इससे यकीनन वाकिफ हैं। लेकिन बाइबल में इसका जिक्र क्यों है, ये तो समझ में आती है बात कि ये हमें जानने की जरूरत है कि कब कब क्या क्या बना। पहले दिन खुदा ने ये चीज बनाई, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, 6ठे दिन ये, लेकिन 7वें दिन आराम किया। इसकी क्या जरूरत थी, इस चीज की हमें जानने की क्या जरूरत थी कि 7वें दिन खुदा ने आराम किया। इसके बगैर भी हमारा काम चल सकता था, क्योंकि ये लिखा है इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, फिर इस दिन ये बना दिया, इस दिन ये बना दिया। लेकिन खास तौर पे ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात हम तक पाक कलाम के जरिए पहुंचाई गई है कि 7वें दिन खुदा ताला ने भी आराम किया। और जैसे हमने देखा कि क्योंकि खुदा ने आराम किया और खुदा जो भी करता है वो अच्छा करता है, इसलिए हमारे लिए भी जरूरी है कि हम आराम करें। खुदा ने जो काम किया उसने हमें एक मॉडल दिया कि देखो मैंने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। तो एक बड़ी आसान और एक बड़ी सीधी सी बात है, जैसे कहते हैं कि तोते को एक चीज सिखानी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखानी पड़ती हैं। हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में जाते हैं, हमें सिखाई जाती हैं चीजें, हमें चीजों को इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इसी तरह से खुदा भी, ये इस खुदा ने हमारी ट्रेनिंग की है कि जब तुम काम करते हो उसके बाद में तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम्हें आराम करना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि कलामे मुकद्दस की सबसे अहम शख्सियत जिसके जरिए हमारे कफारे का बंदोबस्त हुआ, यीशु अल मसीह, हमारा निजात दहिंदा, उसने भी अपनी जमीनी हयात के दौरान आराम किया। ऐसे कई वाकयात हैं जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने आप को अपने शागिर्दों से और लोगों से, भीड़ से अलग किया, तन्हाई में कुछ लम्हात गुजारे खुदा बाप से बातचीत करने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए। अगर हम लूका की इंजील उसके 5वें बाब, मेरे पास हवाले लिखे हुए हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। लूका की इंजील के 5वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला, खुदा यीशु अल मसीह की बात हो रही है, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ करता रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को भीड़ से अलग किया ताकि वो तन्हाई में दुआ कर सके, कुछ वक्त अपने साथ आराम का गुजार सके। मरकज की अंजील उसके पहले बाब की 35वीं से 37वीं आयत में यूं मरकूम है, जो हवाला हमारे लिए तलावत भी किया गया पहले के, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में चला गया, एक वीरान जगह में जहां पर लोग नहीं हैं, और वहां दुआ की और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु आराम की गरज से थोड़ा दूर चला गया, लेकिन जब उसके शागिर्द उसे ढूंढने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि तू इधर आ गया है और तेरे शागिर्द तू आराम कर रहा है, यहाँ पे आराम से बैठ के दुआ कर रहा है, तन्हाई में वक्त गुजार रहा है और लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, उनको तेरी जरूरत है। तो क्या आप नहीं समझते कि इस पैसेज में ये जो इक्तबास आपके लिए पढ़ा गया, इसमें यीशु मसीह का रवैया थोड़ा गैर जिम्मेदाराना था? यीशु मसीह को तो खुदा बाप ने हमारे लिए भेजा कि जा उन लोगों की मदद कर, वो लोग जो परेशान हाल हैं, जो गुनाहों में घिरे हुए हैं, बीमार हैं, तंग दस्त हैं, उनकी मदद कर, और यीशु मसीह आके तो अपने सैर सपाटे करन लग पे है, वो अलहदा से आराम कर रहे हैं। शायद बहुत से लोगों के जहन में यही बात आ रही हो कि नहीं, यीशु को ऐसे नहीं करना चाहिए था, यीशु को सिर्फ लोगों के लिए काम, लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए था, यीशु को हर वक्त काम ही करना चाहिए था, जब भी कोई आ जाए, जिसकी भी जो प्रॉब्लम हो उसको हर वक्त उसका काम ही यही है। लेकिन इस बात, ये सवाल उठाने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि यीशु अल मसीह बखूबी वाकिफ था कि वो दुनिया में किस काम को अंजाम देने के लिए आया है, और वो काम कोई छोटा काम नहीं, वो एक बहुत बड़ा, एक बड़ा मुश्किल और एक बड़ा अजीम काम है, और उस काम को करने के लिए उसको फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत है, और वो स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ आराम करने से मिल सकती है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दुआ करने के जरिए से मिल सकती है, खुदा बाप के साथ वक्त गुजारने के जरिए से। और यही वजह है कि यीशु मसीह जब भी तन्हा होता था आराम भी करता था, फिजिकल रेस्ट भी करता था, स्पिरिचुअल पावर भी गेन करता था, फिजिकल पावर भी गेन करता था, और उसके साथ साथ आराम करते हुए दुआ करने के जरिए से स्पिरिचुअल पावर को भी बूस्ट करता था। और जब हम आराम करें, हम भी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। सबसे पहले तो जरूरी यह है कि हम आराम करें, और फिर जब हम आराम करें तो उस आराम के वक्त को उसी तरह से गुजारें जैसे हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह ने गुजारा, दुआ करके। यीशु मसीह का रिश्ता अपने शागिर्दों के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। मरकज की अंजील उसके छठे बाब की 30वीं और 32वीं आयत में यूं मरकूम है, और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी, बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए। अब आम तौर पे हम ये देखते हैं कि जो उस्ताद का रुतबा है वो बहुत बड़ा है, और यीशु मसीह तो एक अजीम उस्ताद है। आमतौर पर उस्ताद अपने शागिर्दों की बहुत खिंचाई करके रखते हैं, हर वक्त उनसे कोई ना कोई काम लेते रहते हैं, जरा सा आराम करें तो कहते हैं तू हर वेले आराम करता रहना, तू सीखना की वे। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा रवैया नहीं है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तलकीन की कि जरा आराम करो, क्योंकि यीशु मसीह ये जानता है कि जो काम इन्होंने करना है उसके लिए इनको फ्रेश रहने की जरूरत है। पाक कलाम सुनाना, पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए आपको ज़हनी तौर पे फ्रेश होना चाहिए, स्पिरिचुअली आपको फ्रेश होना चाहिए। और ये काम, ये फ्रेशनेस कैसे आ सकती है? अगर आप सारा दिन काम करते रहें और शाम को आप कलाम सुनाते रहें तो मैं नहीं समझता कि शायद उतनी फ्रेश होकर आप ये काम कर सकेंगे जितना खास आराम करने के बाद में, अपने आप को तैयार करने के बाद में अगर आप ये काम करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और यही ख्याल खुदावंद यीशु मसीह ने भी महफूज रखा और अपने शागिर्दों को तलकीन की कि इतना तुमने काम किया है, अब कुछ आराम करो। और ये चीज हम पर यह जाहिर करती है कि आराम करना इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। यीशु ने खुद भी आराम किया और अपने शागिर्दों को भी तलकीन की, और हमें जिनको उसने हुक्म दिया है कि जाओ और तमाम दुनिया में अंजील की बिशारत करो, हम भी उसके शागिर्द हैं, हम भी उसके पैरोकार हैं। इसलिए यही बात हम पर भी आती है कि जब हम भी उसका काम करें तो उसके साथ साथ आराम करना भी मत भूलें। आराम की इम्पोर्टेंस क्या है, 3-4 नकात की सूरत में हम इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। पहला नुक्ता तो यह है कि आराम के जरिए से हम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। बाज़ोकात हम अपनी जिंदगी की हसल एंड बसल में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे काम पर जाना है, 9 बजे काम ज्वाइन करना है, 9 से 10 एक मीटिंग है, 10 से 12 एक मीटिंग है, उसके बाद लंच है, फिर और मीटिंग्स हैं, फिर काम है, शाम को आपने आके टीवी देखना है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम बाज़ोकात अपने आप को ही भूल जाते हैं, और इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि हमारे सुनने की सलाहियत बंद हो जाती है, और हम खुदा की आवाज जो धीमी धीमी आती रहती है, हम वो इतने ज्यादा शोर में उसको भी इग्नोर कर देते हैं कि हम बहुत मसरूफ हैं। अगर आराम करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे तो किसी के लिए, अगर अपने लिए ही हम आराम नहीं करना चाहते, अपनी ही हम आवाज नहीं सुनना चाहते, तो हम खुदा की आवाज कैसे सुनेंगे। इसलिए आराम करने के जरिए से हम बार दफा अपने आप को दोबारा उस नहज पे ले आते हैं, जहां उस जगह पे ले आते हैं जहां पे हम खुदा की आवाज को दोबारा सुन सकें। वो आवाज जो बहुत ज्यादा शोर और गुल और हमारी मसरूफियत के बायस बाकी आवाजों में दब जाती है, आराम करने के जरिए से, टाइम निकालने के जरिए से, अपनी मसरूफ जिंदगी में से आराम का वक्त निकालने के जरिए से हम खुदा की आवाज को भी सुन सकते हैं। अगर हम ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ते जाएं फिनिश लाइन की तरफ, तो जो लोग ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं वो यकीनन जानते हैं कि ट्रेडमिल के ऊपर कोई फिनिशिंग लाइन नजर नहीं आती। और अगर आप भागते जाएं तो बिजली से चलती है, वो चलती रहेगी, आप भी भागते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि आपको खुद ही स्टॉप का बटन दबाना पड़ेगा और फिर उतरेंगे, अदरवाइज ट्रेडमिल चलती रहेगी। जिंदगी भी ऐसे ही है, अगर आप आराम के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, रेस्ट का बटन नहीं दबाएंगे जिंदगी की मशीन पे, तो रेस्ट नहीं आएगा। आप फिनिशिंग लाइन की तरफ, जो कि आखरत है, जो मौत है, हम भागते चले जाएंगे और आराम नहीं करेंगे। और इस दौरान हम क्या क्या मिस कर रहे हैं, खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है, खुदा हमें क्या कहना चाहता है, हम इसको बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हम मसरूफ ही इतने हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है। एक और बात जो जिसका हम जिक्र करेंगे वो यही है, वो इससे मिलती जुलती है कि आराम करना हमें इस चीज को भी रिमाइंड करवाता है कि हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, ना तो हम मशीनें हैं और ना ही हम जानवर हैं। कुछ देर पहले हम जबूर 32 गा रहे थे और उसमें हम गा रहे थे, ना हो कोड़ियां खचरा वांगर तू कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने, पर इनी समझ उन्होंने भी है कि आराम करना है इनी समझ कोड़ियां ते खचरा नु भी है कि आराम करना है। सारा दिन जब गधा काम करता है, पाकिस्तान में तो हम देखते थे कि ईंटें और बजरी और पता नहीं क्या किस किस काम के लिए गधों को लोग इस्तेमाल करते थे, और शाम को जब मजदूर वापस आ जाते थे तो गधे जमीन के ऊपर लेटते थे और आराम करते थे। तो ना हो कोड़ियां खचरा वांगर तू कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने, पर आराम करने की समझ उन्होंने भी है तो इंसानों ने जरूर होनी चाहिए। आराम करने से हम अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि हम इंसान हैं, ना तो हम मशीन हैं और ना ही हम जानवर हैं। इंसान की बहुत ज्यादा कदर मंजिल, इंसान की बहुत ज्यादा कदर है, इतनी ज्यादा कदर है और इतनी ज्यादा अहमियत है कि हम खुदा की शबी और सूरत पे हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम अशरफ अल मखलूकात हैं। खुदा ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है वो हमारे लिए बनाया है, ये जमीन, ये पहाड़, ये खूबसूरत नजारे, लेकिन अगर हम इन्हें इंजॉय ही नहीं करना चाहते, हम इनके लिए टाइम ही नहीं निकालना चाहते, तो हम इनको कैसे इंजॉय कर सकते हैं? हमें रियलाइज करने की जरूरत है अपनी इंपॉर्टेंस को और इस चीज को कि हम इंसान हैं। खुदा ने हमारे लिए ये सब कुछ बनाया, इतने जन्नत नजीर नजारे हैं जिनको इंजॉय करने की जरूरत है, क्योंकि इनको देखकर ऐसे ऐसे नजारे हैं दुनिया में कि उनको देखकर हमारे दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि खुदावंद की तारीफ हो, क्या नजारा है। और हर चीज को जिसको हम देखते हैं वो खुदा ने हमारे लिए बनाई है, और हम अगर उसको नहीं देखते, उसको एंजॉय नहीं करते, तो हम खुदावंद की कुदरत को भी नहीं देख रहे, क्योंकि खुदावंद की कुदरत से सब कुछ तख्लीक हुआ है। एक और चीज जो आराम के बारे में हम देख सकते हैं वो ये है कि आराम करने से हम आजिज और इंकसार भी बनते हैं। वो इस तरह कि हम में से हर एक यकीनन अपने आप को इंतहाई अहमियत, इंतहाई अहम और बड़ा खास शख्स तसव्वुर करता है। हम जिन कंपनियों में काम करते हैं, हम अपनी वर्क प्लेसेस पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम बार दफा समझते हैं कि जब मैं चला गया तो इन्होंने काम रोक जाना, जे मैं चला गया तो पता नहीं ये की करेंगे, या कंपनी बंद हो जाएगी, या अगर मैं नहीं होगा तो ला भी ए तो इन्होंने काम हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं कि वो किसी के बगैर रोक सके। चार्ल्स डी गोल, जो दूसरी जंगे अजीम में फ्रेंच फौज का एक जनरल था, उसने कहा कि द ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल मैन, कि कब्रिस्तान भरे हुए हैं उन लोगों से जो समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया रुक जाएगी। लेकिन जब हम काम पे वापस आते हैं अपनी छुट्टियों के बाद, चाहे वो 2 हफ्ते की हो, 4 हफ्ते की हो, 6 हफ्ते की हो, हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली वो कंपनी अभी भी चल रही होती है और बिजनेस में होती है। वो काम जो हम छोड़ के जाते हैं वो अभी भी चल रहा होता है, और जिस पॉइंट पे हम छोड़ के जाते हैं उससे आगे पहुंचा होता है। तो इससे हमें ये रिमाइंडर मिलता है कि हमें 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं है। खुदावंद ने हमें जो सलाहियात दी हैं वो इसलिए दी हैं कि एक तो हम उनके इस्तेमाल के जरिए से एक दूसरे के काम आ सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। लेकिन जब हम उन सलाहियात पर गरूर कर बैठते हैं, घमंडी हो जाते हैं, तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। आराम करने के जरिए से जब हम देखते हैं कि हमारे बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा है, एक हमें रिमाइंडर मिलता है कि यार हो रे मैं एड्डा भी इम्पोर्टेंट नहीं था, काम चल रहा है सब कुछ। तो आराम करने से हम एक ये चीज भी, इसका भी हम फायदा उठा सकते हैं कि हम्बलनेस और आजिजी और इनकसारी जो है वो फरोग पाती है हमारे अंदर। और एक आखिरी नुक्ता जिसको हम देखेंगे वो ये है कि आराम करने से हमें आखिरत का रिमाइंडर मिलता है। हम छुट्टियों को बहुत इंजॉय करते हैं, हम ब्रेक को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन ब्रेक आखिर को खत्म हो जाती है। मैं जब वापस आया तो सबसे पहले आदिल साहब ने पूछा छुट्टियां कैसी गुजरी, तो मैंने कहा अच्छी थी लेकिन बस खत्म हो गई। तो छुट्टियों का बस एक यही नुकसान होता है कि वो खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वही लाइफ की रूटीन, आपने सुबह उठना है, काम पे जाना है, जो आपकी रूटीन है आपने उसको करना है। एक जो रिमाइंडर हमें आराम करने से, छुट्टियों से मिलता है वो ये भी है कि जिस तरह छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, एक दिन हमारी जिंदगी को भी खत्म हो जाना है, और उसके बाद में जिस काम पे हमने लगना है, जिस जगह पे हमने जाना है, वो हमेशा की होनी है, चाहे वो दाईं तरफ की हो या फिर बाईं तरफ की, चाहे जन्नत हो या जहन्नम, और इसका फैसला हमारे ऊपर है। हमें इसी जिंदगी में, अपनी उस जिंदगी के लिए जो आने वाली जिंदगी है, अपने आप को तैयार करना है। छुट्टियां हमें रिमाइंड करवाती हैं कि हम छुट्टियों को बहुत एंजॉय करते हैं, वक्त को एंजॉय करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ वो कुछ करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, ब्रेक को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाती हैं तो फिर से काम की तरफ वापस आना है। इसी तरह जब हमारी जिंदगी को खत्म होना है तो उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? सारी जिंदगी हम उस जगह पर बैठना चाहते हैं जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, या फिर वहां पर जाना चाहते हैं जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं और ना कोई गम है ना कोई फिक्र है, मौजें ही मौजें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम सारी जिंदगी काम करते रहते हैं। एक शायर ने क्या खूब कहा है, आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम सारी जिंदगी काम करते रहते हैं, आराम करने का बार दफा सोचते भी नहीं, और काम करते 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 ही हम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, और आखिर में हमारे साथ क्या होना है ये तो या हम जानते हैं कि हम किस राह पर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी राहें हैं पाक कलाम हमें बताता है जिनकी इंतहा में, जो देखने में भली मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं, लेकिन हर राह के ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वो हमें ताकीद करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खुदावंद का पाकरू है जो टॉम टॉम का नेविगेटर का काम करता है हमारे लिए, वो हमें बार बार बताता है कि ये रास्ता गलत रास्ता है, ये वो रास्ता है जिसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन बाज़ औकात हम समझते हैं टॉम टॉम खराब हो गया, नेविगेटर ठीक नहीं चल रहा, GPS सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन रूल कुदस एक ऐसा नेविगेटर है जो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा आपको उस राह पे लेकर जाना चाहता है जो दुरुस्त और हमेशा की जिंदगी की राह है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं। मत्ती की अंजील के 11वें बाप की 28वीं आयत में लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बहुत सी ऐसी मुश्किलात हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको दुनियावी आराम ठीक नहीं कर सकता, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम छुट्टियां लेने के बाद भी, हॉलीडेज गुजारने के बाद भी समझते हैं कि ठीक नहीं हुई। कई दफा हमें दिली सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता, जहन में एक अजीब सी खलिश सी होती है। अगर इस तरह का आराम दरकार है तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर हमें आराम की तलाश है तो आराम सिर्फ एक ही हस्ती के पास है, पीस का एक ही सर चश्मा है, हम उस पर पीस नहीं भेजते क्योंकि वो सलामती का सर चश्मा है, वो सलामती का मंबा है, वो कहता है कि तुम पर सलामती हो और उसकी वजह से हम पर सलामती है, उसकी वजह से हमें गुनाहों से मखलसी मिली है, उसकी वजह से हमारा कफारा हुआ है, उसकी वजह से हम आजाद हैं और उसी की वजह से हमारा बाप के साथ मिलाप हुआ है, क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा की है। अगर आप कोई चीज खरीदते हैं बहुत महंगी, अगर आपने घर खरीदा है, आमतौर पे हमारे घर वो पोजेशंस होती हैं जो हमारी सबसे कीमती पोजेशंस होती हैं, सबसे ज्यादा महंगी चीज अक्सर लोग जो सबसे महंगी डील अपनी जिंदगी में करते हैं वो उनके घरों की होती है। हम घर खरीदते हैं लेकिन जब उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई चीज टूटती है या कोई चीज खराब होती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं या छोड़ देते हैं। इस तरह यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा है, उसने अपने खून से हमारी कीमत अदा की है। जिस तरह हमने अपने घरों को अपने मेहनत के पैसे से, मेहनत के रुपए पैसे से खरीदा है, उसने हमें अपने खून से खरीदा है। इसलिए उसने कहा है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई मसला है तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, हम उसके पास जा सकते हैं। मेरी दिली तमन्ना है, दुआ है और इल्तजा भी आप सबसे यही है कि अपनी जिंदगी में जायजा लें, अपनी जिंदगी का जायजा लें और देखें कि क्या आप भी ट्रेडमिल के ऊपर तो नहीं दौड़ रहे और फिनिश लाइन को क्रॉस करना चाहते हैं। हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें और खुदावंद से दरख्वास्त करें कि वो हमारी रहनुमाई करे, आराम करने में भी रहनुमाई करे। और याद रखेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह आराम फरमाता था तो वो बाप से हम कलाम होता था दुआ के जरिए, उसको सामने रखें और जब आराम करें तो खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें आराम करने का मौका दिया है, उसने हमें ऐसी फैसिलिटीज दी हैं, ऐसा माहौल दिया है कि हम आराम कर सकते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। आप सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे। आमीन।